हरे कृष्णा। हम सब आपको ये राधाष्टमी के महामहोत्सव के दिव्य तिथि पर आपका हम स्वागत करते हैं। इस साल में हम जो भी उत्सव मनाते हैं उसमें कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है, लेकिन खास करके ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज का दिन जो है, जो राधा रानी का दिव्य जयंती दिन है, ये बहुत श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी समझ आते हैं कि अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना हो, हम उनके दिव्य शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है उनके द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमेशा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम ऐसे नाम लिखा जाता है। ऐसे एक पुराण में बताया गया है कि अगर कोई बोलेगा नारायण लक्ष्मी, उसको बहुत बड़ा महा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला मैंने, इसलिए शायद हमारे ऊपर उतना पाप नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे एक पुराण में बोला गया कि पहले अगर भगवान का नाम लिया जाए उसके बाद उनकी शक्ति का नाम लिया जाए तो बहुत बड़ा महापाप माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण ऐसे बोलते हैं। तो ये शक्ति जो भगवान के शक्तिमान के नाम के पहले जो लगाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए भगवान का एक नाम है नारायण। ये नारायण नाम का मतलब है, नर आयन का मतलब है सब नरों को सुरक्षा देने वाले, सब नरों को बचा कर रखने वाले, ये एक मीनिंग है नारायण का मतलब। जैसे जब प्रलय होता है, प्रलय काल में सब जीवात्माएं ये पानी में डूब जाते हैं, अपने शरीर भौतिक शरीर को खो बैठते हैं, तभी प्रलय काल में ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उस समय सब जीव नारायण के नाभि में ठहरते हैं, इसलिए उनको नारायण ऐसा कहा गया है। इस तरह जब कोई ब्रह्मांड का पूरा नष्ट हो जाए तो महाविष्णु के नाभि में सब जीवात्माएं रहते हैं, उसके बाद जब नया ब्रह्मांड का सृष्टि किया जाता है तभी उनको शरीर देकर भेज देते हैं अपने अपने खुद की कर्मों में लगे रहने के लिए। इसलिए नारायण जो है सब जीवों के पिता हैं, और लक्ष्मी कौन है, वो जगन माता है। मात समस्त जगतां मधुकैट भारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिनी सित जन प्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। इस श्लोक का मतलब है माता समस्त जगताम, सारे जगत के जीवात्माओं के माता आप हो, कौन, श्री लक्ष्मी जी हो। वक्षो वहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते, भगवान के वक्षस्थल में एक सोने का बाल होता है, उनके लिए लक्ष्मी के लिए एक स्थान रखा भगवान ने, इसलिए भगवान अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी को रखते हैं, लेकिन बीच में बाहर आकर वो भगवान के पांव को दबाती हुई सेवा भी करती है लक्ष्मी, लेकिन भगवान उनके छाती में उनके लिए एक स्थान रखा है। इसलिए आप देखेंगे जैसे बालाजी के छाती में श्रीदेव भूदेवी दोनों बैठे हैं। पक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ति, आपका रूप बहुत सुंदर है और दिव्य मूर्ति है आपका, आपके दिव्य शरीर भौतिक पदार्थों से नहीं बनाया गया है, ये सच्चिदानंद है, विशुद्ध सत्व धातु से बनाया हुआ है आपका शरीर। वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिनी श्रित जन प्रियदान शीले, अनेक जन आपके पदकमलों में आश्रय लेकर आपकी आपको प्रार्थना करते हैं ताकि आप उनको नारायण की सेवा में आप लगा सके। श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम, श्री वेंकट की दयित का मतलब है जो बहुत पसंद दहिते तपसु प्रभात, तपसु प्रभात अमरविंद लोचने भवतु प्रसन्न मुख चंद्र मंडले। हे अरविंद लोचने का मतलब है हे लक्ष्मी जी, जिनके आंख कमल के नयन के बराबर है, जिनके मुखारविंद एक चंद्रमा के बराबर है, मुख चंद्र मंडले विधि शंकर इंद्र मनिताभ रचिते, विधि शंकर और इंद्र इनके धर्म पत्नियां आपको स्तुति करती हैं। कौन है? गौरी है, गौरी और सरस्वती और सची, ये सब बड़े बड़े देवी हैं इस दुनिया के। वो आकर ये रमा देवी को नहीं तो लक्ष्मी जी को प्रार्थना करती हैं। विधि शंकर इंद्र बनिता विरचिते ऋषिशैलनाथ दयिते दयानिधे। और ऋषिशैलनाथ कौन है? वेंकट है। आप उनके लिए बहुत पसंद हो और आप दया के निधि हो, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह लक्ष्मी जी को माता करके संबोधित करके शास्त्र बताते हैं। वो सब जीवात्माओं की माता है। वो क्या करते हैं? सब जीवात्माओं को अपने वात्सल्यादि गुणोज्वलाम भगवती मंदे जगन मातरम, सब जीवों को आकर्षित करती है एक वात्सल्य गुण के द्वारा, और भगवान विष्णु की सेवा में लगाती है। ये लक्ष्मी की सेवा है। इस तरह शास्त्र बताते हैं कि भगवान के तीन शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति करके तीन शक्तियां हैं। अंतरंग शक्ति है आध्यात्मिक दुनिया, वैकुंठ है, और तटस्थ शक्ति है हम जीवात्माएं हैं, और बहिरंग शक्ति है भौतिक दुनिया। तो ये भौतिक दुनिया की सृष्टि क्यों हुई है वो प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे आकाश में जब सूर्य होता है, कभी कभी एक बादल उस सूर्य को हमारे आंखों से ढकता है, हम देख नहीं पाते हैं सूर्य को। लेकिन उस बादल को सृष्टि करने वाला कौन है? वो सूर्य ही उसको निर्माण करता है ना। सूर्य ही समुद्र के पानी को बाष्प करके बादल बनाकर ऊपर बादल को जब लेके जाता है, तभी क्या होता है, उस बादल से हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। इस तरह माया भी इस भौतिक दुनिया को, बहिरंग शक्ति को सृष्टि करने वाले भगवान ही है। क्यों इस तरह सूर्य जैसे भगवान प्रकाशमान है, ऐसे भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ये शास्त्र बताते हैं कि जो जीव भगवान के साथ स्पर्धा करना चाहते हैं और खुद अकेले भोग करना चाहते हैं, उनको इस भौतिक दुनिया में भेजकर उनके लिए एक सुविधा बनाया है भगवान ने, इसको बहिरंग शक्ति बताते हैं। देखिए, इस दुनिया में सब लोग भोग करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनको कर्मी बोला गया है। अगर भोग करके करके थक गया कोई व्यक्ति, इस दुनिया में भगवान बनने के लिए प्रयत्न किया, भगवान बन नहीं पाया, वो लोग क्या सोचते हैं, उधर जाकर भगवान बनेंगे। इस तरह सोचकर वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनको बोलते हैं ज्ञानी। एक भगवान बनना चाहता है इस दुनिया में, वो कर्मी है। दूसरा भगवान बनना चाहता है उधर ब्रह्म ज्योति में, वो कौन है? ज्ञानी है। तो दोनों को ये भक्ति ग्रंथों में खंडन किया गया है, क्योंकि भगवान भगवान है और जीव जीव है। भगवान कभी कभी भी इस भौतिक दुनिया के चंगुल में फंसते नहीं। कृष्ण को मायाधीश बोला गया है और जीव को मायावश बोला गया है। सन्यासी चित्कर्ण जीव सूर्य किरण समा, षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण होय सूर्योपमा। भगवान कृष्ण सूर्य के बराबर है और जीवात्माएं चिंगारी के बराबर है। हम मायावश में आते हैं, लेकिन कृष्ण कभी मायावश में नहीं आते, उनको मायाधीश बोला गया है। इसलिए ये जीव जो है इस दुनिया में भोग के लिए जितना प्रयत्न करता है, उतना वो धोखा खाता है, तकलीफ को भोगता है। जन्म के बाद जन्म तकलीफ को भोगना पड़ता है उसको। इसलिए शास्त्र तुलना करते हैं, वो अंतरंग शक्ति जो भगवत धाम है और ये बहिरंग शक्ति, इनके संबंध में सुंदर तुलना किया गया है शास्त्र में। जैसे आपके मांस होता है, उसके बाद ये जो नाखून आता है, ये बहिरंग शक्ति नाखून के बराबर है, अंतरंग शक्ति मांस के बराबर, क्योंकि मांस में चेतन है लेकिन नाखून में कुछ चेतन नहीं है। इस तरह अंतरंग शक्ति जो है वो आग के बराबर है, लेकिन बहिरंग शक्ति जो है वो धुआं के बराबर है। आग से किचन में जब आग होता है, जब हम कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन धुआं निकलता है तो तकलीफ ही होता है, आंखों से आंसू निकलता है, तकलीफ होता है धुआं से। इस तरह अंतरंग शक्ति में आनंद ही आनंद है, लेकिन बहिरंग शक्ति में दुख ही दुख है बहिरंग शक्ति में। इसलिए हम सब लोग अभी रहने वाले स्थान क्या है, बहिरंग शक्ति में रह रहे हैं हम लोग। बहिरंग का मतलब है बाहर, अंतरंग का मतलब है अंदर, है ना। जैसे अगर सर्दी का मौसम हो, आप अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को घर के अंदर रखते हो तो ताला लगा देते हो, सब आप लोग ब्लैंकेट डालकर अच्छी तरह शांति से रहेंगे अंदर, है ना। लेकिन बाहर रहने वालों को बहुत सर्दी के मौसम से तकलीफ होता है, व्याधि होता है, ठंडी बसता है सब। इस तरह अंतरंग शक्ति में रहने वालों को आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो भगवान के साथ है, भगवान की सेवा में है। इसलिए आप देखेंगे लक्ष्मी, राधा रानी, सीता, सबके हाथ में क्या है, एक कमल है। ईशानम जगतोस्य वेंकटपतेर विष्णोर परम प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्य वास रसिकां तत्शांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्योदि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम। इस तरह लक्ष्मी का एक स्तुति है। ईशानाम जगतो अस्य वेंकटपतेर विष्णु पराम प्रेयसी। हे लक्ष्मी जी, आप इस सारे दुनिया के ईश जो हैं वेंकटाचलपति, उनके पराम प्रेयसी हो आप। इस दुनिया में भी अनेक लोगों को प्रेयसी होते हैं, प्रेमिका प्रेयसी लोग बोलते हैं। इतने सिनेमा होता है, इतने नॉवेल्स होते हैं, लोग प्रेम के भाषा तो हमेशा लोग करते हैं इस दुनिया में। लेकिन इस दुनिया के प्रेम में, भगवान के प्रेम में क्या फर्क है? शास्त्र बताते हैं इस दुनिया के प्रेम लोहा के बराबर है, और भगवान और लक्ष्मी के बीच में जो प्रेम है वो सोने के बराबर है। इसलिए ये बात समझना आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में जो प्रेम है वो काम ही है, लेकिन भगवान और लक्ष्मी के बीच में जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है। क्योंकि भगवान और लक्ष्मी में भिन्नता नहीं है। राधा कृष्ण एक तनु दुई देह धरी अन्योन्य विलास करे आस्वादन करे, ऐसे बताया गया है कि शक्तिर शक्तिमते अभेदः, ऐसे उपनिषद बताते हैं। भगवान और उनके शक्ति में भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे इधर कोई सोच सकते हैं सूर्य और सूर्य के कांति को कोई अलग कर सकता है क्या? कोई कस्तूरी और कस्तूरी से निकलने वाली सुगंध को अलग कर सकता है कोई? कभी अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह भगवान और उनकी शक्ति दोनों एक ही हैं, लेकिन वो दो रूप में दिखाई देते हैं। कारण क्या है? प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए और लीलाएं करने के लिए भगवान शक्तिमान और शक्ति दो रूप में दिखाई देते हैं। जैसे शिवजी और गौरी, उनको अर्धनारीश्वर कहा गया है। आपने देखा अर्धनारीश्वर को, आधा शिव आधा पार्वती देखा आपने। इस तरह लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्णा, और सीता और राम, ये भी शक्ति और शक्तिमान एक ही है, लेकिन दो हुए हैं। भगवान ही विस्तारित करते हैं अपने को एक शक्ति के रूप में। क्यों? लीला करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसे करते हैं। तो इसलिए भगवान और उनके बीच में होने शक्ति के बीच में होने वाले प्रेम जो है वो दिव्य है। और इस भौतिक दुनिया में कथा कथित प्रेम जो है वो क्या है? वो काम है। कारण क्या है? काम और प्रेम में क्या फर्क है? कविराज गोस्वामी बताते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तरे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। देखो, अपने खुद की इंद्रिय तर्पण के लिए करने वाले काम जो भी होते हैं वो काम कहला जाते हैं, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए। लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए करने वाली चीज क्या है? वो प्रेम है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बगीचे से एक सुंदर रोज नहीं तो कमल तोड़ता है, अगर जाकर अपने गर्लफ्रेंड को देता है वो काम है, अगर भगवान को देता है वो प्रेम है। सरल बात है, ये बड़ी बात नहीं है। किसी ने पूछा, अरे बालाजी को तिरुपति में इतना सोने चांदी क्यों लगाते हैं, क्या भगवान को इतना लगाने क्या जरूरत है? किसी ने पूछा, तो हमारे एक भक्त ने उनको पूछा, अगर भगवान को नहीं लगाए तो कहीं और कहां और लगाएंगे उसको? कहां, कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो हम भगवान को नहीं लगाएंगे तो अपने इंद्रिय तर्पण के लिए हम लगाते हैं उसको, किसी भी चीज को। इसलिए इधर बताया गया है कि ईशानाम जगतो अस्य व्यंकटपतेर विष्णु पराम प्रेयसी तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तत् शांति संवर्धिनी, वही चीज भी बताया गया है। और बोला गया है कि वात्सल्यादि गुण उज्ज्वलाम भगवती मंदे जगन मातरम, हे लक्ष्मी जी आप सब जीवों को वात्सल्य भाव दिखाती हो, जिस तरह एक माता अपने बच्चों को प्रेम करती है इस तरह हम जीवों का प्रेम करती हो, और हम जीवों को, हम तो भटके हुए जीव हैं, हमको लेकर आप भगवान की सेवा में लगाते हो। जैसे जब हनुमान जी गए थे सीता माता को मिलने के लिए लंका में, तो हनुमान को सीता ने राम के संबंध में इतने अच्छे अच्छे विषय बताए, और हनुमान को एक दूत बनाकर भगवान रामचंद्र को उन्होंने संदेश भेजी। ऐसा बताया जाता है कि जब हनुमान रामचंद्र के दूत बनकर लंका गए, उनके पूंछ में आग लगाया गया, लेकिन वही हनुमान जब सीता माता के दूत बनकर राम के पास गए, उनको राम ने आलिंगन दिया। अभी आप सोच लो किसकी दूत बनना है आपको, क्या राम की दूत बनना है सीता के दूत बनना है? कारण क्या है, सीता माता जो है वो भी शक्ति है, लादिनी शक्ति है, जैसे राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। तो शास्त्र बताते हैं कि अगर हमें परम शक्तिमान परम भगवान की सेवा में लगना हो तो हमें माता से सीखना चाहिए कैसे उनकी सेवा में लगाए, हम खुद को लगाए, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी सीता एक लादिनी शक्ति जो है वो भगवान की भक्ति के भंडार है, उनके अंदर समुद्र के बराबर भक्ति की भावना है, जिसको हम बताते हैं महाभाव। ऐसे एक श्लोक आता है महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, राधा ठाकुरानी के हृदय में जो महाभाव है ये सबसे महान माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं प्रेम प्रणय स्नेह राग अनुराग और भाव, उसके बाद महाभाव आता है, उसके बाद मदनोक्य महाभाव बोलते हैं, इस तरह अनेक स्तर है प्रेम का। तो ये जो शक्कर को अगर हम पानी में डालकर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो कैंडी बनता है, उसके बाद रॉक कैंडी बनता है, एकदम पत्थर जैसे बन जाता हो। इस तरह प्रेम भी जो होता है गाढ़ बनता जाता है प्रेम भी। तो जैसे हमने बोला पहले आपको, इस दुनिया के साधारण जीव भोग करना चाहते हैं उनको बुभुक्षु बोलते हैं, और कुछ जीवात्माएं इधर भगवान नहीं बन पाए तो ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होकर उधर अहम ब्रह्मास्मि अपने आप को भगवान समझकर उधर लीन होकर रहना चाहते हैं, उनको ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं वो इधर भी भगवान बनना नहीं चाहते, उधर भी भगवान बनना नहीं चाहते, वो सिर्फ भगवान के दास बनकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। देखिए ये भक्तिमय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिव्य सेवा, कृष्ण की भगवान की सेवा, क्योंकि जब आपके हृदय में ये विश्वास बैठ जाता है कि परम सत्य भगवान जो है सर्वाकर्षक कृष्ण है और मैं उनकी सेवा करना चाहिए, ये दास बनकर दासी बनकर सेवा करना चाहिए, बस यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। अगर आपके मन में ये बात के ऊपर विश्वास बैठ गया तो ये आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि पहले पहले हम कुछ सेवा करते हैं कुछ अपेक्षा के साथ, लेकिन धीरे धीरे सब अपेक्षाओं को छोड़कर सिर्फ एक ही अपेक्षा है उनकी संतुष्टि करना, भगवान की संतुष्टि करना। ये राधा नाम जो है वो आता है अनयाराधितो नूनम, ऐसे एक श्लोक आता है भागवत में अनयाराधितो नूनम। ये राधा शब्द को सीधा सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बोला भागवत में, एक गोपी एक गोपी एक गोपी ऐसे करके अनेक बार वो बोलते हैं, उसका कारण भी बताया गया है, क्योंकि भगवत धाम में अनेक भक्त हैं भगवान के, कुछ भक्त लोग ऐश्वर्य में सेवा करते हैं भगवान की, कुछ लोग माधुरी में सेवा करते हैं, तो खास करके गोलोक वृंदावन में सब भक्तों में से श्रेष्ठतम भक्त श्रीमती राधा रानी मानी जाती है, क्योंकि अनेक लोग अलग अलग तरह की सेवाएं करते हैं भगवान की, लेकिन सब लोगों का प्रेरणा मिलता है श्रीमती राधा रानी से। जैसे हम लोग नाम जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको वृंदावन में आप जाएंगे, लोग जपते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसे जपते हैं लोग। वही एक ही चीज है दोनों, हरा हरा का मतलब है राधा है, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक कृष्ण। तो ये हम क्यों हरे कृष्ण साथ में जपते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण युगल है, इसको युगल नाम बोलते हैं, राधा और कृष्ण है। अभी आध्यात्मिक दुनिया के केंद्र हैं राधा और कृष्ण, और उनको केंद्र बिंदु बनाकर सब लोग सेवा में लगते हैं उनकी, जैसे अष्ट सखियां हैं गोपियां हैं, उसके बाद कोटानकोट गोपियां हैं। ये गोपियां जो भगवान की सेवा करते हैं, इसको देखकर कुछ कुछ लोगों के मन में विकार उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके कथन में लिखते हैं कि राधा रानी जी साधारण स्त्री नहीं है इस दुनिया के, नहीं तो कुछ स्वर्ग लोक की कुछ अप्सरा भी नहीं है। ये भौतिक दुनिया से सबसे परे होकर जो आध्यात्मिक दुनिया है, उधर भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम है स्वरूप शक्ति, वो स्वरूप शक्ति है राधा रानी। वो स्वरूप शक्ति से पैदा होने वाले तीन चीज है, संदिनी संबित हलादिनी बोलते हैं। अभी संदिनी जो है उससे आध्यात्मिक दुनिया के सब लोगों का शरीर, जैसे यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण खुद, उनके शरीर सब बनाया हुआ, यह संदिनी शक्ति से बनाया हुआ है, विशुद्ध सत्व है ये शरीर, दिव्य है, चिन्मय है, वो उसमें किसी भी तरह का भौतिक पदार्थ नहीं है, उसमें बनाया हुआ शरीर चिन्मय शरीर को संदिनी शक्ति बोलते हैं। और संबित शक्ति है जो कृष्ण को ज्ञान प्रदान करता है, और सब जीवों को भी ज्ञान प्रदान करता है कि कृष्ण ही उनके परम प्रेमिका है, परम प्रेमिका है, इस तरह का दिव्य ज्ञान प्रदान करता है संबित शक्ति। और ह्लादिनी शक्ति है जो कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति है, परम आनंद है, उसको ह्लादिनी शक्ति बोलते हैं। ये तीनों दिव्य शक्तियां हैं, संदिनी संबित ह्लादिनी, और ये तीनों आते हैं स्वरूप शक्ति न तो चित्त शक्ति से आते हैं। तो ये सबका स्रोत ही श्रीमती राधा रानी है, और उसके बाद वही श्रीमती राधा रानी भौतिक दुनिया में महामाया के रूप में अपने आप को विस्तारित करती है। जैसे आप देखते हैं दुर्गा मां, दुर्गा देवी को दुर्गा माता, देखिए दुर्गा माता भी एक शक्ति है, और वो भी इस भौतिक दुनिया के लोगों को आनंद देने के लिए वो क्या करते हैं, भौतिक पदार्थों को प्रदान करती है। लेकिन हम इन पदार्थों से हम कभी कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीन गुण से प्रभावित हुई चीज इस भौतिक दुनिया के जो है वो हमें कभी सुखी नहीं कर सकते। तो भगवद गीता में भगवान बहुत उसके बारे में विस्तृत तरीके से बताते हैं, वो सातवें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां येतां तरन्तिते। हे अर्जुन, जो लोग भगवान के दिए हुए विधि विधानों को पालन करके भगवत नाम में रहना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए मैंने भौतिक दुनिया सृष्टि किया है। जैसे पुणे में एरवडा जेल सृष्टि किया गया है अलग लोगों के लिए, इस तरह मैंने सृष्टि किया है, और इस दुनिया में आकर उन लोगों को मैंने सौंपा दिया है, किसके पास, माया देवी के पास सौंपा दिया है, और वो लोग दुनिया में भटकेंगे भोग करने के लिए, भागेंगे भटकेंगे, लेकिन उनको सुख नहीं प्राप्त होगा, उनको दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि जब तक मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जो लोग मेरे शरण में आते हैं भगवान कृष्ण बताते हैं, वो लोग इस भौतिक दुनिया से परे होकर भगवत नाम लौट जाएंगे, भगवान बताते हैं भगवत गीता में। भगवान ने सीक्रेट बता दिया कैसे भगवत नाम लौटने का, बस ये माया, देखिए या तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं नहीं तो माया की सेवा करते हैं। जैसे हमने एक ऐसे ही सत्र में पूछा, क्या आपको ऐसे कुत्ता बनना है जो गली में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाला कुत्ता, नहीं तो आपको कुत्ता बनना है एक मालिक के पास। तो अनेक लोगों ने बोला कि हमको स्वतंत्र कुत्ता बनना है, क्योंकि हम कहीं भी बाहर भाग सकते हैं, कुछ मालिक नहीं चाहिए हमको, बोला। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्वतंत्रता से घूमने वाले कुत्ता जो है वो, उसको कभी कभी लोग पत्थर मारते हैं, कभी म्यूनिसिपैलिटी वैन आता है उनको पकड़ के लेके जाकर मारता है, लेकिन उसको कोई मालिक नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसको दुख भोगता है वो। इस तरह इस भौतिक दुनिया में आए हुए जीव सब अनाथ होकर भटक रहे हैं, परम भगवान को भूल कर, भगवान परम भगवान को नकार कर, हा? लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं वो ऐसे कुत्ते के बराबर है जो भगवान के जो मालिक हैं उनके। अगर किसी कुत्ते का मालिक हो आप देख सकते हैं कितना खुशी से वो रहता है। थोड़ा बहुत सेवा करना होता है उसको, सुबह जाकर कुछ न्यूज़पेपर लेके आओ, मालिक के पास दे दो बस। तो मालिक उसको बिस्किट देता है खाने के लिए, कभी कभी महंगे बिस्किट देता है। कभी कभी सड़क में जाते समय हम देखते हैं कार के अंदर वो कुत्ता भी पीछे बैठा है बहुत शांति से, कभी देखा आपने? अमेरिका में जब हम गए थे उधर हमने देखा कि कुत्ते को नहाने के लिए सोप भी है उधर, कुत्ते को खिलाने के लिए तरह तरह के बिस्कुट हैं, अलग अलग चीज पदार्थ खिलाते हैं, उसको रहने के लिए उसके अलग घर भी बनाकर देते हैं कुत्ते को। वो मालिक के साथ अच्छा वो सोफा में बैठ जाता है वो अच्छी तरह। इस तरह प्रभु जी बताते हैं भगवान के जो भक्त बनते हैं, जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा चलता है, अगर आपको थोड़ा पांव में दर्द हो जाए तो आप भी भगवान के साथ जगन्नाथ के रथ में बैठ सकते हो। आपने देखा कुछ लोग बैठते हैं भगवान के साथ साथ बैठकर आप भी जा सकते हो। इस तरह भगवान राजभोग आते हैं खाकर, तो उच्चिष्ट जो है वो दे देते हैं, वो बहुत अच्छा है भक्तों के लिए प्राप्त करने के लिए। तो भक्त लोग अच्छे प्रसाद पाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो भगवान के कुत्ते बनकर जीते हैं। इसका मतलब क्या है? सनात होकर भवंतमेवानुचर निरंतर प्रशांत निशेष मनोरतांतर कदाहमैकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनात जीवितम। हे भगवान, कब ऐसे समय आएगा मैं इस दुनिया में अनाथ होकर भटक रहा हूं, मेरे कथाकथित स्वतंत्रता को छोड़कर मैं सनात बनकर आपके दास बनकर आपके नित्य किंकर बनकर आपकी सेवा करूं, ये पदवी मुझे कब प्राप्त होगा? ऐसे स्तोत्र रत्न में यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं। इस तरह हम सबको प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मुझे आपकी सेवा में स्वीकार कर लो, आपकी दास बना लो, मैं इस दुनिया में भटकना नहीं चाहता, भटक चुका हूं मैं, अभी थक गया हूं, आपकी सेवा में ले लो। जब इस भावना आता है एक जीव के हृदय में तभी भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, एक भटकने वाले जीव को मिलकर उनको सौंप देते हैं श्रीमती राधा रानी के पास। उसके बाद राधा रानी उस भक्त के हृदय में हरि नाम के द्वारा भक्ति शक्ति को प्रदान करती है। तो तभी हम भक्तिमय जीवन शुरू करते हैं धीरे धीरे। तब नाम जब अलग अलग लोग अलग अलग कारण से आते हैं भगवान के पास, कुछ लोग स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, आ जाते हैं भगवान के पास। कुछ लोग हैं उनके घर में झगड़ा हो गया तो मंदिर में आ जाते हैं कुछ समय के लिए, है ना। कुछ लोग पैसा खो बैठे, धंधा बंद पड़ गया तो कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत हताश हो जाते हैं, आत्महत्या की विचार आता है तो मंदिर में आ जाते हैं थोड़ा भगवान की पूजा करने के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग कारण से आते हैं। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, आते हैं भगवान के पास। कुछ लोग भगवान को जानने के लिए आते हैं। कुछ भी कारण हो लेकिन हम भगवान के पदकमल में आ गए, हमें राधा कृष्ण की आश्रय मिल गया तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस तरह भक्ति में सेवा में हमें लगना चाहिए। और जब हम भक्ति में लगते हैं तभी धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि भगवान की सेवा करने वालों में अनेक श्रेणी के भक्त होते हैं। जो लोग कर्मी होकर, ज्ञानी होकर, अष्टांग योगी होकर तरह तरह चीजों को प्राप्त किया, अष्टांग योगी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में कुछ समय के लिए रहते हैं, कर्मी लोग इस दुनिया के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, करोड़ों जन्मों को बिताने के बाद एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में आने के लिए मौका मिलता है। खास करके भगवान बताते हैं भगवान की भक्ति में आकर ये शक्तिमान और शक्ति कृष्ण और कृष्ण के साथ, जैसे हमने बोला राधा और कृष्ण, सीता और राम, इनको जानने के लिए, क्योंकि कृष्ण जितने महान है उतना ही शक्ति भी महान है। देखिए एक बार ऐसे ये घटना घटी इनके जनक महाराज के भवन में। तो ऐसा हुई एक बार, सीता जब छोटी लड़की थी अपने सहेलियों के साथ वो खेल रही थी, तो अचानक वो अंदर गई क्योंकि उनके कुछ सहेलियां ने पूछा कि हमको ये फूल चाहिए, सीता क्या उसको तुम उतार सकती हो। वो अंदर गई, वो भवन के महल के अंदर एक बहुत बड़ा धनुष, शिव धनुष रखा गया था। उस शिव धनुष को उठाने के लिए 600 लोगों की जरूरत है, लेकिन ये सीता अंदर गई, अपने एक ही हाथ से उसको उठा लिया और बाहर आ गई और अपने सब सहेलियों को मदद कर रही थी। जब वो उठा रही थी तभी सब मिनिस्टर लोगों ने देखा, अरे देखो ये क्या कर रही है, छोटी बच्ची इतने बड़े धनुष को उठा रही है। तो बाहर गई और जाकर टक 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 ऐसे उन्होंने सब फूलों को उतारा, फूल सब उतर गए। उसको देख रहे थे बड़े ऋषि मुनिया देख रहे थे, तो वो लोग बेहोश हो गए देखकर। उसके बाद अंदर गई, जिस स्थान पे था उधर रख दिया उसको और वापस लौट गई। तो तभी कुछ ऋषि मुनियों ने जाकर जनक महाराज को बोला, हे जनक महाराज, आपकी बेटी जो साधारण बेटी नहीं है, वो साधारण स्त्री नहीं है, उसके अंदर क्या शक्ति है देखो, ये बड़े धनुष को अकेले उठा दिया उसने। तो वो राजा तो मान नहीं रहे थे। उसके बाद मिनिस्टर लोग आकर बोले उनको, हे राजन, हमने भी हमारे आंखों से देखा। तो तभी राजा अफसोस में पड़ गए कि अगर मेरी बेटी ने असली रूप में किया इसे तो उसके अंदर इतना शक्ति है, उसको इस दुनिया में कौन शादी कर सकता है, क्योंकि इस धनुष को कोई उठा नहीं पाता है, क्योंकि 600 लोग साथ में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ट्रांसफर करते हैं। तभी उन्होंने घोषणा की स्वयंवर सीता की, बोला कि जो राजा इसको उठाकर इसको तोड़ेगा उसको ही हम हमारी बेटी को शादी में देंगे। ऐसे उन्होंने निर्णय की। कारण क्या है, अगर किसी और से शादी किया जाए, अगर सीता उसको आलिंगन करके तो चटनी हो जाएगा वो, है ना। इसलिए ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। इसलिए वो सीन बहुत अच्छा है रामायण में, आप देखेंगे अनेक राजा बड़े बड़े मूंछ वाले हैं, आते हैं सामने ऐसे करके आते हैं, वो तोड़ने, वो तो उसको उठा भी नहीं पाते, नीचे गिर जाते हैं। अंत में जब रामचंद्र आते हैं उसको उठा पाते हैं, वो तोड़ते हैं उसको। इस तरह भगवान शक्तिमान है और सीता शक्ति है, परम शक्ति है। इस तरह भगवान कृष्ण को सर्व आकर्षक बोलते हैं, सर्व आकर्षक व्यक्ति को कृष्ण बोलते हैं। लेकिन सर्व आकर्षक कृष्ण सारे दुनिया को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, लेकिन खुद वो राधा जी की भक्ति भावना से वो प्रभावित है। हमारे इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद के दिनों में एक बहुत मशहूर एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था जयानंद प्रभु। ये जयानंद प्रभु मंदिर के अध्यक्ष थे, लेकिन उन दिनों में मंदिर में पैसा नहीं था, इसलिए खुद वो टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चलाकर पैसा लेके आकर मंदिर को चलाते थे ऐसे। तो इतने नम्र भक्त थे, बहुत सब भक्तों को प्रेम करते थे, सब भक्त उनको प्रेम भी करते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी आए थे एक मंदिर में, उनके मंदिर में। तभी प्रभुपाद जी प्रवचन देते समय वो ढूंढ रहे थे जयानंद प्रभु की तरह, तो सब लोग प्रभुपाद की ओर देख रहे थे, ऐसे प्रभुपाद को देख रहे थे सब लोग, लेकिन प्रभुपाद जयानंद प्रभु को ढूंढ रहे थे। पूछा, जयानंद किधर है? तो कुछ लोगों ने बोला कि प्रभुपाद जयानंद प्रभु दूसरे कमरे में है, कुछ भक्त लोग उधर भी बैठकर प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं, उनके लिए कुछ साउंड सिस्टम अरेंज कर रहे हैं उधर, ऐसे बोले कुछ लोग। तो लोगों ने देखा कि हम लोग प्रभुपाद जी से आकर्षित है और प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु से आकर्षित है। इस तरह सारे दुनिया कृष्ण से आकर्षित है और कृष्ण किससे आकर्षित है? राधा जी से आकर्षित है, क्योंकि राधा रानी के सामने बताया गया है, रास लास गीत नर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्व वंद्य यौवताभिवंदिता पिया नमा मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। ऐसे उनके बारे में बताया गया है कि रास लास गीत नर्म, रास का मतलब है रास नृत्य, लास्य का मतलब है ये रास क्रीड़ा में नृत्य करना, गीत गाना, मजाक उड़ाना, अच्छी तरह अपने आप को सजाना, तरह तरह की कला जैसे रंगोली बनाना, हार बनाना, मिमिक्री करना, ड्रामा करना, इस तरह 64 कलाएं हैं जिनका उद्गम स्थान है राधा जी, उनके पास ही ये सब कलाएं हैं। उधर से ये स्वर्ग लोकों में अप्सराएं सीखती हैं, उसके बाद इस भौतिक दुनिया में भी कुछ कुछ कलाएं लोग जानते हैं, लेकिन 64 कलाओं का उद्गम स्थान श्रीमती राधा जी है। इसलिए सत्कलालिक पंडिता, ऐसे बोला गया है, सब कलाओं में वो पंडित हैं। तो ऐसे वृंदावन में एक दिन जब दुर्वासा मुनि आए, तभी दुर्वासा मुनि को दूर से देखकर ही सब गोपियां भाग गईं, लेकिन राधा जी ठहरी थी, क्योंकि दुर्वास का मतलब है, वास का मतलब है रहना, दुर का मतलब है कठिन, दुर्वास का मतलब उनके साथ कोई नहीं रह सकते, उनका नाम दुर्वास, क्योंकि वो बहुत क्रोधी व्यक्ति है, शाप दे देते हैं, इसलिए सब डरते थे उनसे। लेकिन राधा जी डर नहीं रही थी, तो दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने बोला कि राधा मैंने सुना कि तुम अच्छी तरह भोग बनाते हो, तो मुझे प्रसाद चाहिए, स्वीट राइस चाहिए, मांगा उन्होंने। तो राधा जी बनाकर दी स्वीट राइस। तो उस दिन उन्होंने उनको एक आशीर्वाद दी कि तुम जो भी बनाओगे वो इतना मधुर होगा, और जो इसको खाएंगे वो कभी व्याधि नहीं होगा उनको ऐसे। तो इस तरह राधा जी कुकिंग करने में बड़े निपुण हैं। ऐसे बोला जाता है कि भगवत धाम में हर दिन नया कुकिंग होता है, एक आइटम को दूसरी बार नहीं करती है। अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे तो सुबह इडली बनाते हैं, दोपहर को इडली, शाम को भी इडली खाते हैं। लेकिन राधा जी एक दिन एक बनाती है, अगले दिन दूसरी बार कुछ बनाती नहीं है, नया आइटम बनाती हो, इतना बड़े निपुण है ऐसे। इस तरह कुकिंग में ही नहीं, हार बनाने में, नाचने में, गाने में, सब में निपुण है। जैसे ललिता जी हैं, जो उनके असिस्टेंट हैं, जो अच्छी वीणा बजाती है। इस तरह अलग अलग सखियां हैं जो राधा के असिस्टेंट हैं, ये सब उस स्थान को प्राप्त किए हैं जिसमें वो नित्य निरंतर सेवा में खुद भी लगती हैं और दूसरों को भी लगाती हैं। लेकिन इनको ये स्थान कैसे प्राप्त हुआ है, ये भागवत के दशम स्कंद में परीक्षित ने पूछा इनको, सुखदेव गोस्वामी को, हे सुखदेव गोस्वामी, ये सब गोपियां सुंदर स्त्रियां हैं वृंदावन के, ये कृष्ण को एक परमकांत मानकर, एक प्रेमिका मानकर उनके साथ नाच रही हैं, क्या इनको मालूम है कि ये भगवान है? नहीं तो हो सकता है कि एक प्रेमिका प्रेसी के बीच में जो प्रेम, इस तरह का प्रेम कर रहे हैं। तभी सुखदेव गोस्वामी ने बोला, हे राजन, समझो ये सब गोपियां साधारण गोपियां, साधारण स्त्रियां नहीं है। इनके पूर्व जन्म में कुछ कुछ गोपियों को ऋषिचारी गोपी बोलते हैं, कुछ लोग गोपियों को मुनिचारी गोपी बोलते हैं, जो वेद जो होते हैं वो वेद भी गोपियां बनकर आती हैं। ये जो श्रुति, उनको श्रुतिचारी गोपी बोलते हैं, श्रुतियां गोपी के रूप में आते हैं भगवान के साथ रास नृत्य करने के लिए। इसलिए मुनिचारी गोपियां जो होते हैं, जो दंडकारी ने जंगल में बड़े ऋषि मुनि होकर वो तपस्या कर रहे थे, तब रामचंद्र भगवान सीता के साथ जब पंचवटी में रहे, तभी इन ऋषियों ने देखा कि सीता माता किस तरह भगवान रामचंद्र की सेवा कर रही है माधुर्य भाव में, तो उसको देखकर ये उनको प्रेरणा मिला कि हमें भी इस तरह रामचंद्र की सेवा करने की इच्छा है, एक स्त्री के रूप धारण करके, ऐसे उनको इच्छा हुई। क्योंकि स्त्री का शरीर जो है स्वाभाविक रूप से सेवा करने की स्वभाव है उनके शरीर में ऐसे। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एरोप्लेन में गए थे, तो एक एयर होस्टेस आ गई, पूछा उन्होंने, स्वामी जी आपको क्या चाहिए, वेज या नॉन वेज? प्रभुपाद बोले, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रसाद पाएंगे, हमारे पास प्रसाद है। लेकिन कुछ देर बाद आई, बोले कि स्वामी जी आपने कुछ नहीं कहा, कम से कम कुछ फ्रूट लीजिए। प्रभुपाद बोला ठीक है, तो फ्रूट काट कर दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को बोला, देखो ये स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप से सेवा करने की स्वभाव है उनके अंदर। इस तरह आप देखेंगे, स्त्री को होम मेकर बोलते हैं ना, होम मेकर का मतलब है, अगर एक पुरुष एक घर में अकेला रहता है, जैसे एक लड़के विद्यार्थी ने हमको अपने घर में बुलाया था, हमें गया था, नया नया घर खरीदा था उसने, पूरा घर खाली पड़ा था, लेकिन 3 महीने के बाद शादी हो गया उसका, और एक बार हमको बुलाया था, हम घर में गए, पूरा घर भर गया था। क्योंकि स्त्री जानती है कैसे सजाना चाहिए घर को, तरह तरह चीजों को लाकर, शोकेस रखना, ये सब रखना। इस तरह भगवान इन ऋषियों को ही स्त्री का रूप प्रदान किया है भगवान ने, ताकि वो उनके अंदर जो गाना, नाचना, प्रेम करना, इस तरह का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कामुक भावना से, हमारे आंखों में कामुक भावना है, जो त्रुटि है, उस त्रुटि के साथ हम देखेंगे तो हम देखेंगे क्या है, कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं ऐसे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, हे राजन, कृष्ण जो है वो परम तत्व है, सर्वशक्तिमान है, वो रस विग्रह है और सब इस दुनिया के सब चीजों का उद्गम स्थान है कृष्ण, स्रोत्र है। ऐसे कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हुए कृष्ण के भक्त सारे दुनिया में घूमते हैं सब विकारों से ऊपर उठकर। इस भौतिक दुनिया के भव तरंगों में उनको यातनाओं को अपनाना नहीं पड़ता है, वो तो कभी काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि के वश में नहीं आते हैं भगवान के भक्त। अगर कृष्ण को हृदय में रखते हुए भगवान के भक्त पवित्र हो जाते हैं तो वो कृष्ण कितना पवित्र होना चाहिए, ऐसे बोला सुखदेव गोस्वामी ने। और एक बात बोला उन्होंने परीक्षित को, हे परीक्षित, इस दुनिया के दुनिया को दुनिया से परे होकर अगर परब्रह्म को प्राप्त करना है तो ऋषि मुनि लोग ये दुनिया के सब वासनाओं को छोड़कर कामुक भावनाओं को छोड़कर वो उसके ऊपर उठ जाते हैं और वही लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अगर एक साधारण मनुष्य भी इस दुनिया के इस तरह के काम क्रोध लोभ इत्यादि से उठ सकता है ऊपर, क्या परम सत्य कृष्ण इसके ऊपर नहीं उठ सकते हैं? इस तरह उन्होंने पूछा, क्योंकि कृष्ण ही गंतव्य स्थान है सब लोगों के लिए। इसलिए श्रीधर स्वामी बताते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, ऐसे बताते हैं कृष्ण से ऊपर उठकर कुछ तत्व कुछ नहीं है। शंकराचार्य भी बताते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो पर तत्व है और कृष्ण जो है वो परात्पर तत्व है। इसलिए ये परात्पर तत्व कृष्ण जो है उनमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है और उनके अंदर दिव्य प्रेम जो है उस प्रेम को साधारण जीव काम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे आंखों में जो चश्मा है अगर ये लाल हो तो सब लाल दिखता है, अगर ये पीला हो तो सब पीला दिखता है। जब जांडिस होता है हमारे आंखों में पीलिया होता है, इसलिए सब चीजों को हम पीला देखते हैं। इस तरह हमारे अंदर जो कामुक भावना है उसको निकलना चाहिए। वो कैसे निकल पाएंगे? जब हम राधा कृष्ण का शरण लेकर चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए विधि मार्ग जो है वैधि भक्ति उसको अपना कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह नाम जपेंगे हम दिव्य भावना में आ जाएंगे और हमारे असली स्वरूप को हम समझ पाएंगे। देखिए हमारे संप्रदाय में, मैं एक छोटा कथा बोलकर मैं मेरे प्रोफेसर का विराम दूंगा। मैं हमारे संप्रदाय में बड़े बड़े आचार्य हो चुके हैं जो भगवत धाम में राधा रानी को मदद करने वाले सखियां हैं, नहीं तो सखियों के भी असिस्टेंट है मंजरिया है। एक आचार्य हमारे परंपरा में, उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। ये श्रीनिवास आचार्य रहते थे विष्णुपुर में, उधर बीरामबेर नाम के एक राजा को उन्होंने वैष्णव बना दिया तो उनके सारे प्रजा भी वैष्णव बन गए। तो उधर रहते समय एक दिन ये श्रीनिवास आचार्य बैठ कर भगवान के नामों को जप कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। तो जो लोग अच्छी तरह से नाम जपते हैं, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, सब मल खत्म हो गया है जिनके हृदय में, जिनके हृदय में भक्ति जागृत हो गया है, वो लोग ध्यान के स्थिति में ऊंचे स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण बोलते हैं, स्मरण के बाद आता है अनुस्मृति आता है, जैसे संपत्ति दशा वर्ण दशा ऐसे अलग अलग दशा है, उसमें वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जिसमें वो अपने भौतिक शरीर को इस भौतिक दुनिया में रखते हुए अपने आध्यात्मिक स्वरूप से वो भगवत नाम में जाकर भगवान की दिव्य लीला चेष्टाओं को अनुभव करने की आनंद उनको मिला। एक दिन श्रीनिवास आचार्य ऐसे बैठकर जब नाम जप कर रहे थे और धीरे धीरे शांत हो गए और भगवान कृष्ण के ध्यान में लग गए ऐसे। तो ऐसे बैठे 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 पूरा दिन बैठे थे ऐसे, अनेक लोग आए उनको देखने के लिए, क्या हो गया अभी उठे नहीं। कुछ लोग कार्टन तोड़ा रखकर देखा तो श्वास भी नहीं ले रहे थे, तो अनेक लोग थोड़े डर गए, क्या जिंदा है मरे हैं क्या हो गया। तो पूरा दिन बीत गया, रात भी बीत गया, अगले दिन भी बीत गया, अगले रात भी बीत गया, दो दिन पूरा हो गया। तो अनेक लोग आ गए, कृष्ण वल्लभ ऐसे उनके अनेक शिष्य थे, सब आकर साथ में बैठकर वो नाम जप करने लगे, कीर्तन करने लगे उनको उठाने के लिए, लेकिन उठ नहीं रहे थे वो। इतने में उन्हों सब लोग सोच रहे थे कि उनके एक महान वरिष्ठ शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्र कविराज। तो लोगों ने सोचा कि क्या उनको हम बुलाएं कि बताएं कि क्या हो गया आपके गुरु को। लेकिन रामचंद्र कविराज ताह रहे थे बहुत दूर में, उनको कैसे बुलाया जाए ऐसे वो सोच रहे थे। लेकिन वो अगले दिन तीसरा दिन सुबह सुबह रामचंद्र कविराज अपने आप आ गए उधर, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरे गुरु इस तरह ध्यान में है। क्योंकि देखिए अगर कोई शिष्य गुरु के आदेशों को अपने हृदय में हृदय पूर्वक ले लेता है, अपने तन मन धन प्राण से गुरु की सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में गुरु रहते हैं। इसलिए गुरु को क्या हो रहा है उनको पता चल गया, तो वो आ गए। वो आकर उनके गुरु श्रीनिवास आचार्य के धर्म पत्नी जो है गौरंग प्रिया, उनको दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उसके बाद बोला कि मैं भी ध्यान में बैठ जाऊंगा। वो भी पास में बैठ गए ध्यान में, ध्यान करने के लिए। तो ऐसे वो ध्यान करने लगे। ऐसे ध्यान करते 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 वो भी अपने अपने स्वरूप देह में, सिद्ध देह में भगवत धाम पहुंच गए। तो उधर जाकर ढूंढ रहे थे क्या मेरे गुरु जी है। तो श्रीनिवास आचार्य का असली स्वरूप है मणिमंजरी, उनका नाम है। और ये रामचंद्र कविराज उनका स्वरूप है करुणा मंजरी। तो ये करुणा मंजरी जब गई भगवत धाम में, उधर देखा उन्होंने यमुना के तट में अनेक गोपियां खड़ी थी उधर, और सब गोपियां पानी में कुछ ढूंढ रही थी। तब ये जाकर देखे उनके गुरुजी मणिमंजरी जो उधर ही थे वो, तो उन्होंने जाकर गुरु को मिला उधर वो मंजरी रूप में। तो मणिमंजरी ने बोला करुणा मंजरी को, देखो कल राधा जी एक महारास कर रही थी, उसके बाद सब ये यमुना में नहाने के लिए आई थी, तो उनके क्या बोलते हैं इसको नतनी घूम गया। तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि राधा रानी को बहुत पसंद था वो नतनी, हम ढूंढ रहे मिल नहीं रहा, तुम ही मदद करो आओ। अभी उनको पता चल गया कि उनके गुरु दो दिन किधर गए थे, वो तो उधर गए थे ढूंढ रहे थे अभी भी, ये भी ढूंढने लगे पानी में। तो श्रीनिवास आचार्य के गुरु कौन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका नाम है गुणमंजरी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी, श्रीनिवास आचार्य मणिमंजरी, रामचंद्र कविराज करुणा मंजरी, तीनों ढूंढ रहे थे। तभी रामचंद्र कविराज जो करुणा मंजरी थे उनको ये कमल का एक बहुत बड़ा पत्ता था, पत्ते के नीचे था वो राधा रानी का नतनी। तो ऐसे क्या उन्होंने मिल गया उधर उनको, तो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने करुणा मंजरी उसको लेकर मणिमंजरी को दिया, मणिमंजरी जाकर गुणमंजरी को दिया उन्होंने, और गुणमंजरी ने ललिता को दिया, और ललिता श्रीमती राधा रानी को दिया। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हम जब परंपरा में आते हैं गुरु को छोड़कर हम सीधा राधा जी को पहुंच नहीं सकते हैं, हमेशा हम परंपरा में जाना चाहिए। जैसे हम अपने गुरु को सेवा देते हैं, हमारे गुरु प्रभुपाद जी को सेवा देते हैं, प्रभुपाद जी पक्षांत सरस्वती को सेवा देते हैं, ऐसे उन्होंने दिया। तो राधा जी को जब प्राप्त हुआ बहुत खुश हो गई, पूछा उन्होंने किसको मिला, तो उन्होंने बोला, तो राधा रानी जी तांबुल बोलते है ना, तांबुल उनके पास था, उनके मुंह से एक निकालकर वो तांबुल को मणिमंजरी को दिया उन्होंने। तो मणिमंजरी ने उसको इनको दिया, गुणमंजरी को दिया उन्होंने। गुणमंजरी ने सोचा कि मैंने ढूंढा नहीं, इसलिए मणिमंजरी को दे दिया उन्होंने। तो मणिमंजरी बहुत खुश होकर उसको अपने साड़ी में बांध लिया और बहुत धन्यवाद दी उनको। अभी तो काम पूरा हो गया, तो अपने साधना देह में आ गए। वो तो सिद्ध देह बोलते हैं उसको, ये साधना देह में आ गए। अभी सब लोग आसपास में बैठकर कीर्तन कर रहे थे जोर से, तभी अचानक उन्होंने देखा कि श्रीनिवास आचार्य जोर से हरि बोल बोलते हुए वो बाहर की चेतना आ गया उनको। तो ये अढ़ाई दिन के बाद बाहर निकले अपने समाधि से। तो कुछ ही क्षणों के बाद रामचंद्र कविराज वो भी आ गए हरि बोल बोलते, वो भी बाहर के चेतना में आ गए। तो तभी सब लोग बहुत खुश हो गए कि श्रीनिवास आचार्य आ गए वापिस। लेकिन सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि एकदम सुगंध आ रहा था, किधर से वो सुगंध आ रहा, सब लोग ढूंढ रहे थे। तभी श्रीनिवास आचार्य ने देखा कि उनके धोती में, उनके कमर में बांधकर वही तांबुल था जो उनको राधा रानी से प्राप्त हुआ था उधर। वो तांबुल को निकाला, उन्होंने बोला कि ये तांबुल मेरे लिए नहीं है, ये तो रामचंद्र कविराज जो है करुणा मंजरी, उन्होंने ढूंढा था राधा जी की नतनी को, इसलिए उनको दूंगा करके उनको दे दिया उन्होंने। तो उसके बाद सब लोगों ने उसको सुना, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आध्यात्मिक दुनिया से ये तांबुल इधर कैसे पहुंच गया। लेकिन इस तरह के चमत्कार हुए हैं हमारे संप्रदाय में, हम देख सकते हैं अनेक बार। तो ये मैं आपको ये घटना बताया, कारण क्यों है, हम लोगों का ये जो मांस और हड्डी से बनाया हुआ ये मृत भौतिक शरीर जो है, जो भौतिक सामग्री से बनाया हुआ है, ये तो नश्वर है और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है और आत्मा का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। हम हरेक व्यक्ति जो इधर बैठे हैं, हम या तो भगवान के गोपी हैं, नहीं तो मंजरी हैं, नहीं तो गोप हैं, नहीं तो गाय हैं, नहीं तो पेड़ हैं, कुछ न कुछ हैं उधर आध्यात्मिक दुनिया में। हमारे सिद्ध देह है, स्वरूप है, उस सिद्ध देह को जागृत करना ही जीवन का लक्ष्य है। अभी हम भूल चुके हैं, हमको पता भी नहीं हम कौन है। हम सोच रहे हैं कि मैं, हम आईने में देखते हैं कितना सुंदर हूं, देखते हैं ये तो मर मिटने वाला मांस और हड्डी से बनाया हुआ शरीर है। हम जो आईने में देख रहे हैं वो हम नहीं है। हम कौन है? ये शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा है। तो उस आत्मा जो है वो हरे कृष्ण कर, जितना हम अच्छी तरह करते हैं उतना आत्मा जाग जाता है। आत्मा जाग कर राधा जी कृष्ण इनको समझना, इस दिव्य भक्ति को समझना, दिव्य लीलाओं को समझना, तभी हो सकता है जब हम एक गुरु का आश्रय लेते हैं और राधा जी के पदकमलों में हम आश्रय लेकर उनको प्रार्थना करते हैं कि हे राधा जी आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। प्रभु जी बताते हैं अटेनिंग कृष्णा थ्रू राधा रानी। हे राधा जी ये फूल मेरे पास जो है मैं आपको देता हूँ, आप इसको कृष्ण को अर्पण करो, अगर आप अर्पण करके मुझे रिकमेंडेशन दोगी तो कृष्ण मुझे भी स्वीकारेंगे। इस तरह प्रार्थना करना ही भक्त के लिए श्रेष्ठतम प्रार्थना है, इस तरह प्रभु जी बताते हैं। मैं अभी मेरे प्रवचन का विराम देना चाहूंगा क्योंकि अभी एक छोटा ड्रामा है, उसके बाद अभी 2 मिनट के लिए मैं कीर्तन करूंगा, उसके बाद हम ड्रामा देखेंगे।